पिलाती है हम सब, जैसे हमारी मां पिलाती है। तो ऐसे धर्म के प्रतीक धर्म पिता बैल के तीन पैर काट चुके, तो तुरंत तलवार निकालकर कली को मारने के लिए तलवार उठाता है, तो कली जो है वो उनकी शरण में जाता है। क्षत्रिय का और भी कर्तव्य है, जो शरण में आता है उसको मारते नहीं। कली बहुत होशियार था, जानता था कि राजा बहुत धर्मशील है, बहुत शक्तिशाली है, उससे भी अधिक उसके अंदर भक्ति का बल है, तो तुरंत शरण गया। वो कहते मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे भी मत मारना, मुझे भी आपके राज्य में कोई स्थान देना तो मैं भी रह सकूं। राजा का कहता है आप उस जगह जाओ जहां पर मांसाहार होता है, नशा होती है, व्यभिचार होता है और जुआ खेला जाता है। तो जाता है, पूरा राज ढूंढ के आता है, उसको कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आती, लौट के आता है। अब मैं कहां रहूं, आपने दी हुई जो स्थान है कोई है ही नहीं इस दुनिया में, नहीं आपके आपके राज्य में चक्रवर्ती सम्राट है आप। फिर वो कहते हैं कि जहां पर जरूरत से अधिक धन है वहां पर जाओ। तो तुरंत उसको बहुत स्थान मिल गए, क्योंकि तो राजा वो समृद्ध था। तो इसका तात्पर्य क्या है, कली युग का निवास कहां है, जहां पर जरूरत से अधिक धन जो है वो विराजमान, और साथ साथ में जो पहले स्थान दिया था उनको, जो उस समय उनको नहीं मिला लेकिन अभी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, क्या मांसाहार का स्थान जहां हिंसा हो रही है, जहां व्यभिचार होता है, जुआ खेला जाता है, जहां नशा होती है, लोग स्वार्थी होते हैं, झगड़ा करते हैं, द्वंद युद्ध करते हैं, लड़ते हैं दूसरे से स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण, ये सब जगह कली का निवास स्थान। तो हमारा जो आज का जगह है वो पूरा कली का ही स्थान है। कहां कली का स्थान नहीं है ढूंढना बहुत मुश्किल है, कि किस जगह पर 99.9999% जगह पर उनका ही राज्य है कली का, और 0.0001% पे भक्त लोग रहते हैं जहां पर वो व्यभिचार नहीं करते, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, भगवान का नाम भजन करते हैं। तो यही कली, तो यही राजा परीक्षित एक बार जंगल में जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, तो उनको प्यास लगती है। ये इतने श्रेष्ठ राजा थे, केवल राजा नहीं थे, इनको राज ऋषि कहते थे। राज ऋषि यानी जो राजा भी है ऋषि भी है। ऋषि के साथ धन नहीं होता है लेकिन राजा का धन होता है। तो धन दौलत ऐश्वर्य अधिकार प्रभाव शक्ति सब कुछ होने पर भी ऋषि समान है। ऋषि का गुण धर्म क्या होता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो राजा होते हुए सारे सुख के साधन उपलब्ध होते हुए भी ये भगवान में लीन है, ऐसे राज ऋषि थे वो। तो राज ऋषि होने के नाते उनका निद्रा भूख प्यास सब पे कंट्रोल था, कहीं भी वो भूख प्यास निद्रा के बल से वश नहीं होते थे। ऐसा महान राजा, उसको एक बार प्यास लगती है, तो वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, शमिक ऋषि, और उनसे पानी मांगते हैं। तो शमिक ऋषि उस समय ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में होते हैं कि उनको बाहर का कोई ध्यान नहीं रहता है। शरीर जो है पूरा आत्मा ऐसे स्तर पर जा चुकी है ध्यान में कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, कोई होश ही नहीं। तो बहुत देर तक वो इंतजार करते हैं और बार बार विनती करते हैं जल दो, तो जल नहीं मिलता। तो अचानक उनको गुस्सा आता है, जो आना नहीं चाहिए उनको, उनका नियंत्रण है गुस्से के ऊपर, कोई प्यास के ऊपर भी नियंत्रण है और क्रोध के ऊपर भी है, फिर भी अचानक उनको गुस्सा आ जाता है। अरे इतना बड़ा मैं विश्व का राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, और मैं इनके झोपड़ी में आया हूं, तो स्वागत तो दूर रहा, मैं मांग रहा हूं फिर पानी नहीं दे रहे। तो वो ऋषि को जब भी हम लोग मिलते हैं तो हार पहनाते, तो हार के बदले में वो एक मरा हुआ सांप होता है बाजू में, उसको उठाकर उसके गले में डालते हार की तरफ, एक गुस्से में एक रिएक्शन के रूप में चले जाते। तो ऋषि को फिर भी होश नहीं है, ऋषि फिर भी भगवान के ध्यान में लीन है। लेकिन उस ऋषि का एक बालक है, उसका नाम है श्रृंगी, 7 साल का है, ब्राह्मण है वो भी, उसके अंदर भी पिताजी के द्वारा ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई है, मंत्र प्राप्त हुए, शक्ति और बल आध्यात्मिक प्राप्त है, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है, शास्त्र का ज्ञान है, सब कुछ होते हुए भी छोटे उम्र का है, तो खेल खेल में है। तो वो नदी के किनारे कहीं खेल रहा है या तालाब किनारे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन त्रिकालज्ञ यानी कि सब उसको भविष्य भूत सब पता है, तो उसको हृदय में थोड़ा अनुभूति होती है कोई मेरे पिताजी का अपमान कर रहा है, उसको वहां खेलते खेलते पता चलता है, और कौन कर रहा है अपराध, क्यों कर रहा है, किसकी छानबीन किए बिना वहीं पर क्रोध से वश होकर जनेऊ हाथ में लेकर तोड़ डालता है एक धागा उसका और सांप देता है कि जो भी व्यक्ति ये कार्य कर रहा है किया है वो 7 दिन के बाद में सर्प पक्षी के द्वारा दंश होकर मर जाएगा, तो सांप देता है। लेकिन वो सांप इतना भयंकर था क्योंकि राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, भगवान का स्वरूप है वो प्रजा के लिए, जैसे शिष्य के लिए गुरु भगवान का प्रतीक है, एक स्त्री के लिए उसका पति भगवान का स्वरूप है, एक बालक के लिए उसका पिता भगवान का स्वरूप है, प्रतिनिधि है, वैसे प्रजा के लिए राजा भगवान का प्रतीक है। और प्रजा तो अनंत होती है, पूरे विश्व भर की होती है, पूरे विश्व का कल्याण उस राजा के हाथ में होता है, और ये तो धर्मशील श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न राजा था, तो ऐसे राजा को ऐसा भयंकर शाप दिया गया तो उस शाप के प्रभाव से शमिक ऋषि का ध्यान टूट गया, जो ध्यान में थे वो, और तुरंत वो जब होश में आए तो वो भी त्रिकालज्ञ थे, वो भी तो बहुत बड़ी विभूति थी, उनको तुरंत समझ में आया क्या हो गया कि मैंने कैसे उनको स्वागत नहीं किया, वो चले गए सांप पहनाकर, मेरे बेटे ने शाप दिया, सब उनको ध्यान में आया। लेकिन कुछ समय पहले जो पूरे विश्व के सम्राट थे, सब धन संपत्ति के मालिक थे, सब जगह प्रभाव था उनका, एक क्षण के अंदर उनके अंदर 7 दिन के अंदर मृत्यु सामने खड़ी हो गई, है ना? ऐसे हमारे जीवन में हो सकता है, बिना बताए संकट आते हैं, कभी भी आते हैं, जब हम कब से जरा भी उम्मीद नहीं होती हमसे तो सबसे बड़े संकट आते हैं, जब बहुत प्लानिंग करते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम पूरी तरह गाफिल रहते हैं उस समय बहुत भयंकर संकट आता है, वैसे ही राजा के जीवन में आता है। अभी जवान व्यक्ति है, अभी बहुत साल जीना चाहिए उसको, राज्य चलाना चाहिए धर्म के अनुसार, लेकिन 7 दिन में मृत्यु का समय आया, तो राजा भी विचार करने लगे ऐसा कैसे हुआ, मैं इतना क्रोध में कैसे आया, इतनी सी प्यास के लिए मैं इतना होश खो बैठा, संतुलन खो बैठा, गुस्सा आया मुझे, मैंने ऐसा ऋषि का अपमान ऐसे करके कार्य किया, सब सर्प डालकर उसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनको लगा कि शायद ये भगवान की इच्छा होगी, जो आज तक नहीं हुआ ऐसे मेरे हाथ से हुआ, शायद कोई भगवान का इसके अंदर हेतु होगा। एक शुद्ध भक्त हमेशा ऐसे सोचता है, हम लोग क्या बोलेंगे, सब दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे तुरंत, ऐसा कैसे करता है वो ऋषि को, ऋषि ने समझ हमारा स्वागत नहीं किया, उनकी गलती है, ऊपर से उसका बेटे शाप भी दिया, ऐसे कैसे है, नहीं जाके बात करेंगे उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग बोलेंगे। लेकिन राजा जो है भगवान की इच्छा मानकर तुरंत राज वस्त्र को उतार देता है, राज अलंकार उतार देता है, मुकुट उतार देता है, और साधु का वेश पहनकर राज्य छोड़कर चले जाता है, कोई परेशानी नहीं, एक ही क्षण के अंदर निर्णय लेकर, इतना बड़ा राज्य है, इतना अधिकार है, हमारे आजकल के पॉलिटिशियन कितने अपनी कुर्सी पे चिपके रहते हैं, उनको गाली दे देकर दे देकर दे देकर टिका कर करके आरोप कर करके भी वो छोड़ते नहीं अपनी जगह, और यहां पर प्रजा चाह रही है कि आप रहो, लेकिन फिर भी वो जा रहे। प्रभु रामचंद्र हमारे इतने प्रिय थे अयोध्या वासियों के लिए, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, अयोध्या के राजा बनने वाले, दशरथ राजा छोड़ने वाले राज्य कारबार, और कई कई कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा राजा होना चाहिए, तो कई कई बुलाते राम जी को बुलाओ, कई कई बहुत गुस्से में काले वस्त्र पहनकर कोप भवन में ऐसे लाल आंखें करके खड़ी है, तो कहते माता क्या बात है, बड़े पे जो कहने जा रही हो तुम सहन नहीं कर पाओगे, तो कहते माता आपकी खुशी मेरी खुशी है, आप बोलो तो सही। तो कहती है कि मेरा बेटा अमरक राजा बनेगा और तुम 14 साल के लिए वनवास में जाओगे। तो क्या रिएक्शन हम लोग उम्मीद करते हैं? मां तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, पिताजी की भी ऐसी इच्छा है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, आप मुझे राज दरबार से जंगल भेज रही हो, ये अन्याय है, ऐसे बोलना नॉर्मल है। डिस्कशन करेंगे, राज दरबार में लेके जाएंगे, गुरु जी को लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, न्याय देंगे, ये सही नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा तो आप बोलेगा सही बात है, बिल्कुल उसका अधिकार था, उसका कल सब सेरेमनी है, सब कार्ड बढ़ चुके हैं, सब जगह डेकोरेशन हो गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये माता कुछ अलग ही बोल रही है, अपने सही बात है, नॉर्मल है। भगवान रामचंद्र क्या बोलते हैं, अरे बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी नाराज हो, तुरंत जाते हैं, राजकुमार का वस्त्र उतारते हैं, तुरंत गेहुआ वस्त्र पहन के चले आते हैं नंगे पैर, क्योंकि उनको आसक्ति नहीं है राजा बनने की। वैसे ही राज सेवा राजा परीक्षित कर रहे हैं, लेकिन उनको राज कुर्सी की अटैचमेंट नहीं है, ये कुर्सी मुझे बहुत जरूरी है, ये मेरे जीवन धन है सब, ऐसा नहीं, उनका जीवन धन केवल भगवान की सेवा है, इसलिए उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। झगड़ा करने वाले लोगों का वर्णन नहीं आता उसके, जो शुद्ध भक्त है उन्होंने अपने जीवन में संकट आने पर कैसा व्यवहार किया उसका वर्णन भागवत में आता है। बाकी सब जो थर्ड क्लास कहानी होती है वो उपन्यास में आती है, तो स्टेशन पर मिलती है रेलवे में, घटिया सब बातें, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, लेकिन भागवत में वो बातें आती है जो श्रेष्ठ संत रूपी लोग हैं, राजा हैं, कुछ कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ साधु है, उन्होंने कैसे व्यवहार किया। तुरंत राजा जो है राज दरबार छोड़ के, राज अधिकार छोड़ के, साधु बनकर अंग में केवल कटी वस्त्र पहनकर गंगा जी के किनारे। अब ये घटना इतनी बड़ी घटना है कि पूरे विश्व में न्यूज फैल गया सब जगह पे, अरे राजा परीक्षित को साथ मिला, 7 दिन के बाद मरेंगे, छोड़ के जा रहे हैं। तो विश्व में जितने ऋषि थे वो भी सब पीछे पीछे आ गए होंगे गंगा जी के किनारे, क्योंकि बड़ी गंभीर घटना थी, इतना बड़ा घटना, एक सबसे प्रिय और धर्मशील राजा जो है अभी राज छोड़ के जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, राज्य का क्या होगा, विश्व का क्या होगा। तो वो नदी किनारे आते हैं, वहां पर कुछ हजारों संत जो हैं इकट्ठा होते हैं, उसमें कौन कौन है पता है, अगस्ती मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, नारद मुनि है, इतने बड़े बड़े जो स्वर्गलोक से भी नीचे आए हुए, और वहां से व्यासदेव के पुत्र आते हैं सुखदेव जी, इनकी भी लंबी कहानी है, अब इस पर नहीं जाएंगे हम, बड़े विभूति थे, बड़े विभूति ब्रह्मज्ञानी थे, और जन्म होने के पश्चात व्यासदेव के मुख से ही उन्हें भागवत सुना था, और व्यासदेव के मुख से भागवत सुनने के बाद में गर्भ से बाहर आने का निर्णय लिया उन्होंने। 16 साल तक माता के गर्भ में रहे, आपको दुनिया में जन्म लेना ही नहीं, ये सब दुनिया इतनी दुख भरी हुई है, जन्म मृत्यु से भरी हुई है, संकट से भरी है, कष्ट से भरी हुई है, मुझे नहीं आना है दुनिया। तो व्यासदेव व्याकुल होकर उनको भागवत सुनाते, भागवत सुनकर बाहर आने का निर्णय लेते, लेकिन बाहर आते ही सीधे चले जाते। हमारे बालक तो बाहर आने के बाद में 3-4 साल तो पराधीन रहते हैं, माता की गोद में रहते हैं, चल नहीं सकते, इतने बड़े महात्मा थे, सिर्फ जन्म लेते ही निकल गए जंगल में। जंगल में गए तो जा रहे थे और पिताजी भाग भाग के जा रहे पीछे से, हे पुत्र मत जाओ, लेकिन ये सुन भी नहीं रहे, वैसे ही जा रहे एकदम विरक्त। तो जब बहुत आगे चले गए तो उनको कुछ बच्चे लोगों को आवाज सुनाई पड़ा, छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु कुल में रह रहे हैं, और दिखाई पड़ रहा है कि वो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, सर मुंडवाया है, धोती कुर्ता पहन के गुरु की सेवा में लकड़ी फूल इकट्ठा करने जंगल में गए, और वो कुछ श्लोक बोल रहे हैं, जो लकड़ी इकट्ठा करते करते मुख से कुछ श्लोक बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन का श्लोक बोल रहे हैं, जहां पर भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बलराम जी के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गाय को लेकर बंसी बजा रहे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, उनके बांसुरी से सुंदर ध्वनि निकल रही है, उनके हर एक अंग का वर्णन किया है। तो वो श्लोक सुनकर ये रुक जाते हैं, उनको पूछते हैं ये श्लोक आपने कहां सीखा, हमारे गुरु जी ने सिखाया। तो जो जा रहे हैं विरक्त होकर दुनिया छोड़कर, ये श्लोक सुनकर भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर रुक गए, और पूछा उन्होंने, इंक्वायरी किया कि कहां से सीखा आपने, चलो गुरुजी के पास लेके चलते हैं और वहां पर आपको बताते हैं। तो ये दोबारा लौट के गुरुजी के पास आते हैं, तो बच्चे को गुरु कौन थे, व्यासदेव जो उनके पिताजी हैं, जिनको ही छोड़कर वो भाग रहे थे, दोबारा लौट के अपने घर पे लौट के आते, फिर दोबारा पिताजी से श्रीमद भागवत सीखते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं। व्यासदेव जो भगवान के ज्ञान के अवतार है, वो ज्ञान के अवतार अपने पुत्र सुखदेव को पुनः दूसरी बार श्रीमद भागवत पढ़ाते हैं और तब जाके ब्रह्म ज्ञानी से लेकर वो शुद्ध भक्त बनते हैं, परम हंस बन जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उस तरफ से सुखदेव जी आ रहे हैं अकेले और इस तरफ से परीक्षित महाराज जा रहे हैं, उनके पीछे संत मंडली है, उनके पीछे सुखदेव जी के पिताजी भी हैं व्यासदेव जी, लेकिन पिताजी गृहस्थ हैं और पुत्र ब्रह्मचारी है। तो पिताजी पुत्र की कथा बैठने के लिए सुनने के लिए बैठ जाते हैं, परीक्षित भी बैठ जाते, संत लोग बैठ जाते हैं, सब लोग मिलकर सुखदेव को तय करते हैं कि ये सबसे प्रगत साधु हैं और इनके मुख से हम सुनेंगे। तो परीक्षित जी उनके चरणों में बैठ जाते हैं और प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न करते हैं कि जिसके सामने मृत्यु खड़ी है उसका कर्तव्य क्या है। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक बताए जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब देखिए आप, इतना बड़ा राजा है, ऑलरेडी भगवान का भक्त है, उसके प्रभाव से ऑलरेडी दुनिया सब भक्त बनी हुई है, उसके राज्य में कहीं पाप नहीं हो रहा है, स्वयं राजऋषि है, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय गुरु के सामने बैठा हुआ है और प्रश्न कर रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। उसके उत्तर में इतने श्लोक कहे गए। तो श्रीमद् भागवत वो शास्त्र है जो बताता है कि हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे बिताना चाहिए, और उनके जीवन में 7 दिन और 7 रात थे, 7 दिन और 7 रात कोई चाय की ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेकफास्ट ब्रेक नहीं है, कोई लंच ब्रेक नहीं है, कोई सोने का समय नहीं है, कोई हाथ पांव ढीला करने के लिए ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। 7 दिन 7 रात 24/7 कथा सुन रहे हैं और हम बोलेंगे भी 4 दिन हो गए, थक गए बेचारे, खाना भी नहीं खाया है, सोए भी नहीं है, तो शायद आंख बंद होगी होती होगी। हमारी कथा में होता है ना, कथा में जब कथा करते हैं तो आधा ऑडियंस हो जाता है, आधा ऑडियंस बोल रहे हैं कब कथा खत्म होगी। ऐसा नहीं, उनका जैसे दिन बढ़ रहे हैं, उनके आगे बढ़ रहे हैं, वैसे उनका उत्साह बढ़ रहा है और नए नए प्रश्न कर रहे हैं, एक एक कथा पर नए प्रश्न कर रहे हैं, शंका उपस्थित कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। तो जब एंड में सुखदेव जी परीक्षित महाराज को अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे आप जैसा विद्यार्थी कभी मिला नहीं मुझे, इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद तपस्या है, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं कुछ नहीं, फिर भी जितना समय बीतता जा रहा है उतना उत्साह भी बढ़ते जा रहा है, ऐसा कोई विद्यार्थी होता है क्या? बोले गुरु जी एक 5 मिनट ब्रेक दीजिए जरा, मेरे को जरा बुध होके आना है, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा सा ड्रिंक लेके आता हूं, थोड़ा फ्रेश होके आता हूं। नहीं, ऐसा विद्यार्थी मिलना भी गुरु जी के लिए भाग्य की बात है, इसलिए वो गुरु जी सुखदेव जी परीक्षित महाराज का अभिनंदन करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी कोई खाने रहे पीने रहे, वो भी सोए नहीं है, वो भी बोलते जा रहे हैं कंटिन्यू 7 और 7 दिन रात। ऐसे ही सभा में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है, जहां पर विद्यार्थी जो है वो सबसे उत्सुक है सीखने के लिए, उसको बाकी कुछ पढ़ा नहीं है, नींद नहीं हुआ है, खाना नहीं मिला है, उसका उत्साह जो है इस सब भौतिक बंधन से, शरीर के बंधन के परे है, और ऐसे ही विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है, और ये हमारे जीवन का सार है। उस सभा में कोई कुत्ता बिल्ली सांप पंछी नहीं बैठे थे, सब मनुष्य थे, देवता थे, ऋषि थे, देव ऋषि थे, तो ये सब जो है ज्ञान ये सब मनुष्यों के लिए, मनुष्य योनि के लिए, क्योंकि देवता जो भी मनुष्य योनि में होते हैं उनका शरीर अलग होता है लेकिन योनि एक ही है, उनकी कास्ट एक ही है, मनुष्य। देवता भी मनुष्य होते लेकिन थोड़े ऊंचे श्रेणी के, लेकिन 4 लाख योनि जो बताई है मनुष्यों की उसके अंदर देवता भी आते हैं, तो उनके लिए सब शास्त्र है, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, भागवत जी, ये सब हमारे लिए। उसमें जरूरी क्या है समझना कि जीवन में संकट कभी भी आ सकता है, सबसे गाफिल अवस्था में, इसमें कोई संकट की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें महान संकट आ सकता है और हमारा सारा शांति जो है एक क्षण में भयंकर अशांति में रूपांतर हो सकता है उसका, हो सकता है ना। जब जापान में लोग आराम से सो रहे थे, उसको पता था क्या अभी एक लहर आएगी, सब गाड़ियां उठा के ले जाएगी और यहाँ की गाड़ियां 10 किलोमीटर आगे मिलेगी, ऐसा कुछ आइडिया था किसी को? सब प्लान था, उनको पता था होने वाला है, चलो तैयार थे उसके लिए, ऐसा कुछ था नहीं, देखते रह गए वो। कुछ लोग हेलीकॉप्टर में थे, ऐसे रूटीन राउंड में थे, तो पूरा शूटिंग है उसका, कैसे वो लहर आई देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अचानक सब लोग भयंकर संकट में आ गए, कुछ लोग तो वैसे ही मर गए, कुछ सोचने के बिना ही पहले ही मर गए, कुछ लोग बेघर हो गए, हजारों लाखों लोग, अणुभट्टी के अंदर आग लग गई, कोई प्लानिंग नहीं था उसका, कोई इंडिकेशन भी नहीं था। वैसे 2001 साल में 26 जनवरी के दिन 25 जनवरी को लोग सो गए रात को आराम से, और भुज के अंदर भूकंप आ गया और कुछ लोग सोए सोए जमीन के अंदर गए, पता ही नहीं चला उनको। और कुछ लोग ऐसे थे जो भयंकर अमीर थे, कच्छ में बहुत बिजनेसमैन लोग रहते हैं, करोड़पति थे, बहुत प्रॉपर्टी उनकी बहुत सारे। लेकिन आजकल की दुनिया में कैसा होता है ना, सब प्रॉपर्टी पेपर के रूप में होती है, बराबर ना। आपका फ्लैट किस रूप में आपके हाथ में है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, पेपर है आपके हाथ में, तो पेपर में आपका नाम लिखा हुआ है इसलिए आपका घर आपका है। समझो मैं आपके पेपर चोरी करके ले गया आपका, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि आपको घर के मालिक है? नहीं कर सकते। आपका पैसा किधर है? वो भी कागज के रूप में। चूहा खा गया तो, आग दिला दिया तो, यू डोंट नो। पानी में डूब गया तो, यू डोंट नो। बच्चा ने आके मस्ती मस्ती में तोड़ दिया उसको तो, ऐसा प्रॉपर्टी है। तो वैसे कच्छ में ऐसे हजारों लोग धनी थे, करोड़पति थे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी पेपर के रूप में थी, शेयर के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में, नोट के रूप में, कबड़ के अंदर लॉक थी। लेकिन जब रात को सो कर उठे तो खुद को बचा लिया उन्होंने कैसे भी करके, लेकिन उनका घर जो है वो सारे कपाट के साथ में जमीन के अंदर चला गया। और नाइट ड्रेस में सोए थे, कोई रात को गहने पर पहनकर सोता नहीं ना कोई, अच्छा पूरा पूरा शरीर में गहना लगाकर मेकअप करके सोता नहीं कोई, तो सारा गहना जो भी है चश्मा सब उतार के जब बचे तो कैसे बचे? केवल नाइट ड्रेस के ऊपर, चश्मा भी नहीं, क्योंकि तो सब चीज जमीन के अंदर चला गया। खाने को अन्न नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, कुंडी कौड़ी भी नहीं, खाली बच गए बस। तो वहां से अंगूठा दिखा दिखा के रिक्शा को फ्री में, ट्रक में फ्री में, और सामाख्याली स्टेशन पे आकर फ्री में ट्रेन में बैठकर विदाउट टिकट बोरीवली तक पहुंचे, और उसी वस्त्र में, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, बोरीवली रिश्ता के घर पे आ गए, पूरी कहानी बताई और भक्ति वेदांत में आए फ्री इलाज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए वुंड्स के ऊपर। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोलते हैं हम लोग करोड़पति लोग हैं प्रभु जी, लेकिन आज आपके पास फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए आए, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा होता है जीवन में, संकट जीवन में कभी भी आ सकता है। पदम पदम यद विपदम नते शाम, ऐसे कहा गया। कितने भी बड़े होंगे हम, कितने भी बड़े पढ़े लिखे होंगे, पर्शाली होंगे, हमारे कॉन्टेक्ट होंगे, हमारे संपर्क होंगे, हमारे डॉक्टर के साथ में फ्रेंडशिप होगी, हॉस्पिटल से हम जानकारी रखते होंगे, हमारे पास सब कुछ सुविधा है, हमारे पास सुरक्षा गार्ड है, हम हमेशा वैक्सीन लेते रहते हैं, को रोग नहीं होने वाला है, ऐसा सब कुछ होने पर भी संकट ऐसे आता है जीवन में, सब समाप्त कर देता है। कितनी बड़ी मैकेनिज्म आपके पास में होगी भूकंप को रोकने की और तूफान को रोकने की और सुनामी को रोकने की, लेकिन जब वो होता है तो कुछ नहीं कर सकते हम। जब तक उसका वेग समाप्त नहीं होता है तब तक सब लोग देखते हैं बैठ के, वेग समाप्त हो गया फिर राहत कार्य शुरू होता है तुरंत, होता है ना। हेलीकॉप्टर कभी भी पहुंच ही नहीं पाते, जब रुकता है और थमता है तूफान फिर हेलीकॉप्टर जाते हैं, फिर आकाश से पैकेट फेंकते हैं, फिर ये करते हैं, फिर भी वो क्या क्या होते रहते हैं। तात्पर्य कहने का क्या है, हमारा जीवन आज की स्थिति में कितना भी शांतिमय क्यों ना हो, शांति तो है नहीं, मन के अंदर भी अशांति है, बाहर भी अशांति है, लेकिन सो कॉल्ड तथा कथित फिलहाल कोई संकट नहीं, बड़ा कोई मामला नहीं है ऐसा हमको लगता होगा, आराम से बैठे होंगे, लेकिन संकट कभी भी आ सकता है और जीवन को तितर बितर कर सकता है या जीवन को नष्ट भी कर सकता है। कितने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जापान के अंदर, लेकिन वो एटम जो अणुभट्टी है ना उसको जलने से रोक नहीं पाए, वो उसका किरणोत्सार को रोक नहीं पाए। कुछ समय के लिए कुछ घटना हुई लेकिन उसके बाद में घटनाएं होती रही, फिर आग लग गई, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर उसके अंदर एटॉमिक रेज सब जगह फैल गए, सबका हेल्थ खराब हो गया, सब भाग रहे हैं, लाखों लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, पता नहीं उनके घर कहां रहे, घर को उखाड़ के वो समुद्र में गया घर उनका, सारा प्रॉपर्टी के साथ, पढ़े लिखे अमीर सब लोग भिखारी बन गए, वो आश्रित है गवर्नमेंट के, कैंप में रह रहे, फ्री खाना जो बट रहा है उसको खा रहे, बुद्धिमान लोग डिग्री होल्डर्स क्या कर सकते हैं बता। वैसे ही कथा है, कल राजा था वो आदमी, विश्व का राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और आज निर्वस्त्र होकर कटी वस्त्र पहनकर गंगा के किनारे बैठा है, प्रश्न कर रहा है क्या करना चाहिए। तो ये बाकी लोग छाती पीट कर रोते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, भक्त होते भगवान के, वो ऐसे संकट में भी डंगाते नहीं, वो क्या करते हैं, सही गुरु का आश्रय लेते हैं, प्रश्न करते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। तो हमको सीखना क्या चाहिए कि अगर हमको वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं मृत्यु से कैसे बचना चाहिए, कैसे मृत्यु को टालना चाहिए, अगर मृत्यु सामने खड़ी हो कैसे कुछ मंत्र जपना चाहिए जिससे मृत्यु टाल जाए, ऐसा कुछ नहीं रहे हो। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मरना तो है ही यार, ऋषि के शाप से मरेंगे या कोई युद्ध में मरेंगे या कोई कैंसर होके मरेगा, रोग होके मरेगा, तो ज्ञान है पूरा, वो क्या सोच रहे हैं कि ये तो मृत्यु का एक बहाना है, मृत्यु तो निश्चित है, तो विश्व के कल्याण के लिए उनसे प्रश्न पूछा, वो तो ऋषि स्वयं थे, लेकिन हम और आपके लिए ज्ञान कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान जो है, ये भगवान की योजना थी कि परीक्षित के बहाने पूरे विश्व को श्रीमद् भागवत का ज्ञान मिले, सुखदेव जी के दिव्य मुख से जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाए, इसलिए उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। दिस इज ऑल कोरियोग्राफ्ड, पूरी तरह से भगवान की योजना है, और उसको भी महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया, यस आई एक्सेप्ट, मैंने आपको जो भी आपकी योजना है, आपने मुझे गुस्सा दिलवाया, मेरे हाथ से वो अपराध करवाया, मुझे शाप दिलवाया, आई एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, आपकी कोई दिव्य योजना होगी उसके पीछे। ये भाव जो है ये बहुत जरूरी है, जब तक ये भाव किसी के मन में नहीं आता है तब तक भगवान की कृपा जो है हमको प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज इसका प्रयोजन क्या है सब बताने का, कि बिना मार्गदर्शन के कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में प्रगति नहीं कर सकता। भगवान के विषय में क्यों, अगर हमको साइकिल सीखना है ना तो भी हमको गुरु चाहिए, और ड्राइविंग सीखना है तो भी कोई टीचर चाहिए, कोई प्लंबिंग सीखना है, कोई आईटीआई सीखना है तो भी हमको कोई टीचर चाहिए, डॉक्टरी करनी है तो भी कोई प्रोफेसर चाहिए, पीएचडी करना है तो भी कोई मास्टर चाहिए, कोई गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए, कौन सी ऐसी है, हाँ किसी लड़के को खाना बनाना सीखना है तो भी कोई टीचर चाहिए, माता हो या बहन हो बड़ी या कोई और कोई हो चाची हो, सब जगह टीचर चाहिए हमको, और सब जगह हम टीचर को लेते भी है अच्छी तरह से और सिस्टमेटिक काम करते हैं। अगर आप उसमें आपकी बेटी को डॉक्टर बनना है तो आप उसको बोलेंगे क्या, तो वो जाके डॉक्टर के दवाखाना जरा बैठो 3 महीने के लिए फिर अपना दवाखाना खोल दो, ऐसा होता है क्या, आप लोग नहीं करेंगे ऐसा, आप 12th में पढ़ाई करवाएंगे, एग्जाम दिलवाएंगे, क्लास को भेजेंगे कोटा में किधर ट्रेनिंग करने के लिए, फिर एग्जाम दिलवाएंगे, फिर एडमिशन लेंगे, सब फीस भरेंगे उसको, 5.5 साल तक उसको पढ़ाई करवाएंगे, एग्जाम देंगे और MBBS डिग्री बनाएंगे, फिर MD करने के लिए और प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम देंगे, वो सब काम हम लोग बहुत सिस्टमेटिक करते हैं। लेकिन आप लोग, हम लोग भगवान के विषय में कुछ जानना है तो क्या करते हैं, नहीं कुछ माँ ने बोला था, कुछ ग्रैंडफादर ने बोला था, कुछ टीचर ने स्कूल में बोलते बोलते बताया था, और कुछ घर में भी सुना था, वो सबके मिलकर खिचड़ी बना देते हैं और बोलते हैं ये हमारा धर्म है इसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोग जब भी भगवान का विषय आता है तो हम लोग एकदम मोस्ट अनसिस्टमेटिक बन जाते हैं, है ना, और जब दुनियादारी की बातें आती हैं, पैसा कमाना है, डिग्री हासिल करनी है, शादी करनी है, तो सारे सिस्टम्स को फॉलो करते हैं हम लोग, अमरीका जाना है तो बराबर पासपोर्ट बनाएंगे, वीजा लेंगे, अप्लाई करेंगे, उसका फीस भरेंगे, टिकट निकालेंगे, बराबर से प्लानिंग करेंगे और अमरीका जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करना है तो जो भी कहीं सुनी बातों को इकट्ठा करके तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, बोला यस दिस इज परफेक्ट, किसी ने हाथ दिखाया और कुछ चमत्कार दिखाया, ये भगवान है, ठीक है फिर इसको फॉलो करेंगे, कोई जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, कुछ नहीं। अब जो लड़की की शादी करेंगे कैसे आप, हाँ कोई रस्ते में कोई अच्छा सुंदर आदमी दिखा पकड़ के शादी कर दिया उसका, ऐसा होता है क्या कभी, कितनी जांच करेंगे, कितनी पूछेंगे कौन है, कहाँ का है, किसका पति है, किसका बेटा है, किसका लड़का है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या धंधा है इसका, घर रहने का है कि भाड़े का है, कैसे भटकने वाला है, कि कई बच्चे गुण है, कि क्या गुण कैसे है उसके, कितनी जांच पड़ताल करेंगे, 3-4 महीने डिस्कस करते रहेंगे, फिर हाँ बोलेंगे, फिर उसकी भी प्लानिंग करेंगे, एंगेजमेंट कभी करना है, कितना देना है, कितना लेना है, कौन से हॉल में खाना खिलाएंगे, किसको बुलाएंगे, कितना लंबा प्लानिंग करते हैं हम लोग एक चीज के लिए, लेकिन भगवान के विषय में कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई प्लानिंग ही नहीं। ना हमने हमारे तो 3 अगरबत्ती दिन में घुमाते हैं, बहुत भागते हैं भगवान, हम बड़े धार्मिक है, तो बिल्कुल भगवान को 3 अगरबत्ती दिखाए बिना हम जाते नहीं किधर, हमारा देनी शुरुआत नहीं था, लेकिन क्या करना चाहिए, गाइडेंस कोई नहीं, उधर गुरु नहीं चाहिए हमको। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राजा परीक्षित इतना महान साक्षात्कारी पुरुष था, फिर भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया। ऐसे कई कहानियां हैं शास्त्र में, ध्रुव जी को अढ़ल पद प्राप्त करना था, ऐसा राज्य चाहिए था जो उसको पिताजी का भी नहीं था और दादाजी का भी नहीं था, तो जंगल में गए ढूंढते ढूंढते, और नारद मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनके आदेश के अनुसार जब भजन पूजन तपस्या किया तब जाकर उनको भगवान की दर्शन हुआ। प्रहलाद जी का भी यही था, प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद मुनि की शिक्षा प्राप्त हुई थी, वो गुरु बन चुके थे उनके, और जो भी गर्भ में उन्हें शिक्षा प्राप्त किया उसके अनुसार उन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर महापापी पिताजी का भी सामना किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सहन किया सब, भगवान की कृपा को आकर्षित किया, भगवान को प्रकट किया उन्होंने, ये सब गुरु की महिमा है। बिना गुरु की, साक्षात्कारी गुरु के बिना हम लोग कोई प्रगति नहीं कर सकते, कोई ना कोई गाइड जरूर चाहिए हमको, और गुरु जी मिलने तक भी गाइड चाहिए, गुरु जी की प्राप्ति होने के लिए भी गाइड चाहिए, गुरु जैसे हमको रस्ते में घूमते नहीं मिलते, चलो हम दादर में घूमने गए तो वहां गुरु जी मिल गए, उधर ही दीक्षा दे दिया उन्होंने, ऐसा नहीं होता है, हमको हमारे लिए भी योग्यता होनी चाहिए, जब उस उतना योग्य बनेंगे तो भगवान हमें गुरु जी की मुलाकात कराएंगे। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जब हम योग्य हो जाते हैं, ऐसे कहा गया है कि जब हम जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में तभी हमारे लिए गुरु जी तय है, ऑलरेडी इस दुनिया में ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि हमारे कल्याण का और मुक्ति का मार्ग है, इसलिए भगवान हर जीव के लिए गुरु जी रेडी रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब लोग उनके पास पहुंचे, और उनके पास पहुंचने का उन्होंने रास्ता बना दिया कि बिना मेरे भक्त के गुरु बन के स्वीकार करे बिना आप मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक जीव गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता है, और जब तक उसके द्वारा बताए गए वचनों का पालन नहीं करता है, और जब तक अपने जीवन पूर्ण उनके चरणों में अर्पण नहीं करता है, तब तक मेरी अनुभूति यानी भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ये बहुत वर्ल्ड फेमस रियलाइजेशन है, मतलब सबको पता है ये ऐसा ही होता है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो आप सब लोगों ने भक्ति विधान हॉस्पिटल में आप किसी न किसी बहाने आए, बीमारी के बहाने आए, या किसी को मिलने आए होंगे, आप किसी के रिश्तेदार होंगे मरीजों के, अलग अलग प्रकार से आए, लेकिन भगवान ने आपको थोड़ा उनका परिचय करा दिया इस मार्ग से, बीमारी ठीक करते करते भगवान ने अपना परिचय दिया, भगवान ने आपको थोड़ा सा नॉलेज भी दिया, यहाँ का जो अनोखे कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं उसके माध्यम से आपको आपके अंदर जो चिंगारी है जो सबसे हृदय में रहती है, हाँ आत्मा के अंदर सबके अंदर वो चिंगारी है भगवान के प्रेम की, भगवान के भजन की, पूजन की, भगवान के ऊपर श्रद्धा की जो चिंगारी है, थोड़ा उसको हवा दिया गया और उसके आप ज्योति में रूपांतर हो गया है, उसका अग्नि में रूपांतर होना है आगे जाकर, तो उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दुनिया में क्या है, सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप, नॉलेज। अगर हमको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे हम, तो जाने के लिए भी पहले पता होना चाहिए कहाँ जाना है, कौन सा टिकट निकालना है, वी रूट वी हैव टू नो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में सबसे पहला काम जो है वो ज्ञान प्राप्त करना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा भगवान का क्या रिश्ता है, भगवान कौन है, और वो रिश्ता जो हमारा भगवान का है उसको जागृत कैसे करना है, दोबारा कैसे उसको लाना है जीवन में, ये सब पता होने के बाद में हम ढूंढेंगे। अगर जिलेबी खाना है तो पहले जिलेबी क्या है, वो कहाँ मिलती है, अच्छी कहाँ मिलती है, खराब कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में होती है, इसका दाम क्या होता है, जाना कैसे उस दुकान तक, सब पता करेंगे फिर जाएंगे और जलेबी सही जगह से सही दाम में लेके खाएंगे, जब उसको आनंद मिलेगा। नॉलेज फर्स्ट। बीमार हो गए तो पता करेंगे कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कब बैठता है वो, उसकी फीस क्या है, कितनी लाइन रहती है, कब उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सब कुछ पता करेंगे फिर जाएंगे सोच समझ के एकदम। वैसे ही भगवान के बारे में पहले हम सुनेंगे, जानकारी करेंगे, फिर उसका अमल करेंगे। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल इसलिए खोला गया है, वैसे बीमारी का तो बहाना है, आप सबको भगवान से मिलाना है। क्योंकि तो दुनिया में सब लोग ऐसे ही दुख भोग रहे हैं ना, लेकिन किसी न किसी मार्ग से, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश, कोई भी प्रकार से हो, अस्पताल में क्यों ना हो, बीमारी का इलाज ठीक करते क्यों ना हो, अगर भगवान का परिचय हो गया तो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य है, जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। नहीं तो ऐसे ही अनंत लोग जो जन्म लेते हैं और कीड़े मकोड़े तरह मर जाते हैं, मनुष्य होकर भी जन्म लेते हैं, कभी गधा हाथी घोड़ा भी बन जाते हैं, उस जीवन में क्या लाभ है। जीवन तो शव समान, जीवन में जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से रिश्ता नहीं है, तो वो जीवन भी मुर्दे के समान बताया गया है, जिंदा चलता फिरता मुर्दा है, जिसमें भगवान का साक्षात्कार नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से आसक्ति नहीं है, ऐसे जीवन से क्या लाभ। भागवत में लिखा है कि द्विपद पशु, मनुष्य होने के बाद भी अगर भगवान से अट्रैक्शन नहीं है तो दो पैरों के पशु, ऐसे वर्णन किया है ऐसे व्यक्तियों का। हमको नहीं बनना है ऐसे व्यक्तियों की तरह, हमको इसी जीवन में यह प्राप्त करना है भगवान कौन है, उनसे कैसे संपर्क किया जाता है, कैसे उनको मिल सकते हैं हम, वो सीखना यह धर्म का मेन काम है। बाकी धन कमाना, शरीर को चलाना, परिवार को चलाना, व्यवहार करना, बाकी सब जो बातें हैं वो भी जरूरी है, लेकिन मेन बिजनेस वो नहीं है। बाय द वे एग्जाम देना है मुझे, लेकिन मुझे रिक्शा भी करना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, खाना खा के भी जाना पड़ेगा, बाय द वे, लेकिन मेरा मेन काम एग्जाम देना है। बाकी साधनों की आवश्यकता है, लेकिन बाकी साधन मेन नहीं होते, उद्देश्य जो है वो मुख्य होता है। तो उद्देश्य यह है भगवान की प्राप्ति करना। तो आप लोगों को हम विनती करते हैं, आप लोगों में से कोई लोग युवा अवस्था में है, कोई मध्यम वर्ग वय की अवस्था में है, कोई बूढ़े अवस्था में है, कोई बालक अवस्था में है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई छोटे से पढ़े हैं, कोई धनी है, कोई शायद मिडिल क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये सब भेद होने के पश्चात भी सबके जीवन का उद्देश्य एक ही है, जाना सबको एक ही जगह पे। अरे हमारा तो जीवन खत्म हो गया, अभी कितना बचा है हमारा, क्या होगा इस साल में, अभी अगले जन्म आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। कितना भी समय हो गया हो, शरीर की, मन की, धन की, किसी भी अवस्था में हम हो, फिर भी हम सबका जीवन का उद्देश्य एक ही है और वो बदलता नहीं है। चाहे हम जापान में भूकंप की अवस्था में कष्ट में हो, या भारत के अभी शांति में बैठे हो, फिर भी उनका भी जीवन का उद्देश्य वो है, हमारे जीवन का उद्देश्य भी वही है। वो बोलेंगे ये समय नहीं है भगवान की भक्ति करने का, अभी तो हमारा घर टूट गया है, घर नदी में समुद्र में बह गया है, उनका उद्देश्य भी वही है, हमारा उद्देश्य भी वही है। जीवन संकट की अवस्था में है या जीवन सुकून की अवस्था में, दोनों अवस्था में उद्देश्य बदलता नहीं है, गोल डजंट चेंज। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि बीमारी के बहाने हो, भगवान ने अपना परिचय आपको करा दिया है, इसको पकड़े रहो, कोई छोटी अवस्था में, कोई बड़ी अवस्था में, उम्र के सब कुछ भूलकर हमको जीवन के इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए। जितना समय बचा है हमारे हाथ में वो उसी कार्य के लिए अर्पण करना है, इस चिंता में व्यस्त नहीं करना है क्या होगा कैसे होगा, अभी शरीर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, हार्ट ट्रबल है, ये अभी कैसे भक्ति होगी, बच्चा देखता नहीं है हमारा, धन कहां से आएगा, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, बीमारी में ये चिंता सबके जीवन में है। जवान आदमी सोचता होगा शादी कैसे होगी, घर कैसे बनाऊंगा, लोन कैसे पेमेंट करूंगा, ये शादीशुदा जवान आदमी की तकलीफ है। बच्चा बोलेगा अभी मैं एग्जाम कैसे पास होगा, अभी इतना तकलीफ है, एग्जाम आ रही है, मई महीना अप्रैल महीना एग्जाम का है, पढ़ाई नहीं हुआ है, मम्मी खेलने को देती नहीं है, हाँ गेंद लाके नहीं दिया है, ये उसकी समस्या है। हर एक जीवन में समस्या, हर एक समय में समस्या है। कुछ दो दो चार बच्चे हो चुके हैं, बोलेगा अरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, खाली खेलते रहते हैं, उधर नशा करते रहते हैं, कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, वो चिंता है, वो टेंशन है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो वो ड्रग लेते हैं, वो टेंशन है। कौन सा समय ऐसा है जिसमें टेंशन नहीं, बताओ? तो क्या हर समय टेंशन का बहाना बना के इस उद्देश्य को, इस जीवन के लक्ष्य को बाजू में रखते जाएंगे क्या? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी वो है किसी भी समय संकट हो या ना हो, टेंशन हो ना हो, जीवन के उद्देश्य के रास्ते पर रहना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है। कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, जो स्थिति भगवान ने रखी है उसी में उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हमारा सारा जो मेहनत है वो सफल है। परिवार के लोग है तो भी सफल है, बिजनेसमैन भी सफल है, पढ़ा लिखा भी सफल है, अनपढ़ भी सफल है, क्योंकि जीवन के उद्देश्य को पकड़ के रखा है उसने। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु आपका देखते क्वालिफिकेशन क्या है क्या? नहीं नहीं, ये MD आदमी है, इसको जरा बाजू में रखो, ये गरीब आदमी उसको उधर रखो, अरे तो प्राइम मिनिस्टर है उसको साइड में रखो, ऐसा होता है क्या? मृत्यु किसी का क्वालिफिकेशन, धन संपत्ति, पोजीशन देखती है क्या? समय होता तो बराबर उठा के ले जाती है, और जो उसका यात्रा होती है उसके बाद की वो कोई डिफरेंट नहीं होती है। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर है उसको जरा अच्छे व्हीकल में लेके जाना, ये आदमी भिखारी था मेरा रोड के रास्ते पर उसको जरा घसीटते लेके जाना, ऐसा नहीं होता। मृत्यु के सामने सबका एक माप होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। कितना भी सिना तान कर चलेंगे जिंदगी में, मृत्यु होने के बाद आड़ा ही चलते हैं सब लोग कंधे पे किसी के, है? तो फिर वो जो क्वालिफिकेशन को जो आप गर्व करते हैं, चिंता करते हैं उसके बारे में कैसे होगा, उनका कुछ वैल्यू नहीं है, सब छोड़ के जाना इधर। इसलिए भेदभाव अगर होना है तो हम नौसिखिया भक्त हैं, वो प्रगत भक्त हैं, वो ऋषि मुनि हैं, ये भेदभाव हो सकता है। लेकिन मैं धनवान हूं, वो गरीब है, मैं सुंदर हूं, वो कुरूप है, वो बहुत पावरफुल आदमी है, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, इनका घर 4 महल है, इनके पास मेरे पास 1 रूप किचन भी नहीं है, इसका फर्क वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वो मृत्यु का क्राइटेरिया नहीं है, मृत्यु उस पर काम नहीं करती। समय होने पर मृत्यु हर आदमी को उठा के ले जाती है, और जिसने जितना भक्ति किया है उतना भेदभाव उसके अंदर होता है। यमराज भी जो भगवान का नाम जप करते हैं उसको छूते नहीं है, उसको विष्णु की तरफ से आते हैं दूत, विष्णु दूत आते हैं और वो उनको ले जाते हैं आगे की गति प्राप्त कराने के लिए। वो क्राइटेरिया जरूर है, यमराज के दूतों को पता है कि जहां पर तुलसी जी की पूजा होती है, भगवान का नाम जप होता है, भगवान की सेवा होती है, वैष्णवों की सेवा होती है, वहां पर हमको जाना नहीं है, ये उनको ऑलरेडी पता है। तो हमें उस कैटेगरी में आना है, क्योंकि वो कैटेगरी वहां पर विचार की जाती है उसके बारे में, दैट क्राइटेरिया इज डिस्कस्ड ओवर देयर, एप्लीकेबल ओवर देयर। इसलिए आपको विनती करते हैं, आज आप जिस भी अवस्था में हैं भगवान के विषय में, उसको वहीं छोड़ मत दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। हम बहाना ये था बीमारी का, भक्ति विधान आने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आपको बढ़ाना है इसको, और इसी जीवन के काल में इस उद्देश्य को पूरा भी करना है। ये सोचता नहीं कि 4-5 जन्म लेंगे और हम लोग और पंच जन्म की योजना बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो किसने देखा आगे जन्म क्या होगा और क्या किस जगह जन्म लेंगे, कौन से देश में जाएंगे, हो सकता है जापान में जन्म लेंगे और भूकंप में मर जाएंगे अगले जन्म में, वी डोंट नो, हम वी नो, कैन नॉट से एनीथिंग। इसलिए आप इसको गंभीरता से लीजिए। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए बनाए रखे, जैसे कि आप अभी भगवदगीता कोर्स आपने अटेंड किया होगा ना, तो भगवदगीता कोर्स में आपको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म साक्षात्कार की यात्रा, उसके बारे में आपने सुना, समझा, कुछ समझा कुछ नहीं समझा होगा, आगे कैसे उसको बढ़ाना है, क्या करना है उसके आगे, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स यहां पर बने। ये आपको खाली मैं बताया ना, जो चिंगारी है उसको ज्योति बनाने का काम चल रहा है, आगे उसको अग्नि बनाना है, और हृदय में जितने भी अनर्थ है सब नष्ट करना है उसके प्रभाव से, तो वो हमको करना है, आपको करना है, खुद करना होगा वो, क्योंकि मृत्यु की परीक्षा में आपके साथ में कोई आ सकता नहीं है, आपको अकेले को एग्जाम देनी पड़ेगी, जैसे MBBS की होती है, MD की होती है। हाँ पापा आप भी साथ चलो, जब मैं भूल जाऊंगा तो मुझे याद दिलाओ कि उसका उत्तर क्या है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, जो भी है जितना भी याद दिलाया सेंटर के बाहर, बाद में कैंडिडेट अकेला अंदर जाता है, अपने नंबर पर बैठता है, सारे प्रश्न के उत्तर खुद लिखता है और पास फेल भी खुद होता है, वैसे ही मृत्यु का है। इतना भी सपोर्ट यहां पर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आपको खुद देनी है, तो उसके लिए हमको अभी आगे बढ़ना है। तो हमारे पास एक सिस्टम है, मेंटर सिस्टम बोलते हैं, जिन लोगों को इसमें गंभीरता से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो भक्ति मार्ग में कुछ लोगों ने कुछ साल तक भक्ति का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को चुनकर उनके गाइडेंस में आपको जाना है। तो वो आपको बताएंगे कैसे जप करना है, कैसे चार नियम का पालन करना है, शास्त्र कैसे पढ़ना है, शास्त्र का अर्थ समझना कैसे है, और क्या क्या करना है, तीर्थ यात्रा करनी है क्या, क्या जरूरी है उसमें, जप के लिए कौन सा स्थान अच्छा है, कैसे जगह बैठना चाहिए, क्या क्या प्रयास करना है, जप की बाधाएं क्या है, उससे बचना कैसे है, खाना अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, प्रैक्टिकल बात है ना सभी, तो जीवन में कैसे उतरना है उसको, वो सब मेंटर सिस्टम में सिखाते हैं। वो भी छोटे ग्रुप में सिखाते नहीं कि भाई सभा बैठी हुई है 50 लोग सुन रहे हैं, ऐसे नहीं, 4-5-7 लोग, 14 लोग, 15 लोग, छोटा ग्रुप में एक पढ़ा लिखा आदमी जो इसमें प्रगति कर चुका है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ट्रेंड है पूरा, लोगों को ट्रेनिंग देता है। और आपको एक स्तर से एक हमारे स्कूल में लिखा होता है प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर होता है ना, फर्स्ट टू फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ टू टेंथ सेकेंडरी स्कूल, उसमें टीचर अलग होते हैं। तो वो टीचर भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां से वहां भेज रहा है, वहां से वहां भेज रहा है, हर टीचर इंपॉर्टेंट है। वैसे मेंटर सिस्टम आपको प्राथमिक गाइडेंस देने के लिए दिए। तो जिस जिसको इंटरेस्ट है अपने नाम लीजिए, हम आपके भाषा के अनुकूल, आपके रहने की जगह के अनुकूल आपको वो मेंटर्स एलोकेट करेंगे। फिर तो आपको उनके घर पे जाकर वो अच्छी तरह से हफ्ते में एक दिन, हर वीक में एक दिन 2 घंटा आपको मिलेंगे छोटे ग्रुप में, वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझाएंगे आपको कैसे करना है। फिर एक स्तर पर आने के पश्चात फिर गुरु जी की आपकी पहचान हो जाएगी, आपको अनुकूल गुरु के परिचय किया जाएगा, फिर आपकी दीक्षा भी हो सकती है। दीक्षा होना मतलब भगवान के धाम में जाने का वीजा, दीक्षा होना का मतलब वो है, उसको कहते हैं इनिशिएशन, सब गाइडेंस मिलेगा आपको। और इस मार्ग में प्रगति करने के लिए जो जो अनुकूल चीज है, तो यात्रा में जाना चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा, सब कुछ आपको बताएंगे क्या क्या जरूरी है, वो कौन से 64 अंग है जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको समझना जरूरी है और पालन भी करना जरूरी है, वो 64 अंगों का भी परिचय किया जाएगा। बहुत बड़ी सिस्टम बना के रखिए। तो आज की स्थिति में जिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, इसको छोड़ मत देना आ गया वैसे, अरे ठीक है एक बार अच्छा लगा, बाद में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा मत करना, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट बिजनेस है। बाकी मेरा बिजनेस मेडिकल का होगा, आपका बिजनेस लकड़ी का होगा, आपका बिजनेस किलों का होगा और कुछ होगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन सबका बिजनेस एक इम्पोर्टेंट है, भगवान की प्राप्ति करना। तो ये सबके लिए अनुकूल है और आवश्यक भी है। तो आप लोगों को विनती करते हैं कि इस कथा के समाप्त होने के बाद हमारी माताएं पीछे बैठी हैं, उनके बाद जाकर अपना नाम दीजिए और कुछ ही समय में आपकी भाषा और आपका जो भी स्थिति है उसको देखकर अनुकूल आपके योग्य ऐसे मेंटर्स आपको दिए जाएंगे। तो उनकी मीटिंग शुरू होगी, उसके भी नियम आपको बताए जाएंगे और धीरे धीरे आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हाँ, इस बात को गंभीरता से लेने के लिए आप प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
कृष्णा, मैं डॉक्टर वीजी सानबाग का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत सुंदर क्लास था। मैं आशा करती हूँ आप सबको इनका प्रभाव पड़ा ही होगा, और जो इन्होंने अपनी फैसिलिटी के बारे में जो बताया हॉस्पिटल के, वो आप प्लीज अपने रजिस्ट्रेशन वहां कर सकते हैं, मेंटर के फॉर्म हमारे माताजी वहां पे मिलेंगे और वो भरवा देंगे।
कोई प्रश्न है किसी का, क्वेश्चन पूछना है किसी को, कोई शंका है, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? यस,
वाह।